000 ओपनिंग नरेशन। एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
015 हो स्पीकर, स्वागत है ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिन्होंने 20वीं सदी के मतलब बौद्धिक जगत पर बहुत गहरा असर डाला,
लेकिन शायद उनका नाम आम बातचीत में उतना सुनने को नहीं मिलता। रुडोल्फ कार्नैप।
बिल्कुल, कार्नैप। हाँ, वो तार्किक प्रत्यक्षवाद या जिसे बाद में तार्किक अनुभववाद कहा गया, उस पूरे मूवमेंट के कह सकते हैं एक मजबूत स्तंभ थे।
और उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी।
क्या?
दर्शन को, फिलॉसफी को विज्ञान की तरह बनाना, एकदम सटीक, कठोर और भरोसेमंद।
उन्होंने वो बुनियादी सवाल उठाया है कि भाई हम क्या जान सकते हैं, ज्ञान की हदें क्या हैं?
उनमें से कई तो असल में दुनिया के बारे में है ही नहीं।
दिलचस्प। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और रुडोल्फ कार्नैप के इन विचारों को थोड़ा और समझते हैं।
कार्नैप का जो जीवन काल था 1891 से 1970, वो दुनिया के लिए बहुत उथल पुथल वाला समय था।
हाँ बिल्कुल, एक तरफ तो आप देखिए विज्ञान में जबरदस्त क्रांतियां हो रही थी, आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत आ गया, क्वांटम मैकेनिक्स आ गई,
जिसने मतलब दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया था।
बिल्कुल, भौतिकी की जो पुरानी समझ थी वो हिल गई थी पूरी तरह।
और दूसरी तरफ यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता।
हाँ, पहला विश्व युद्ध, फिर वो नाजीवाद का उदय, बहुत भयानक दौर था।
सही का। वह इसी माहौल में बौद्धिक स्तर पर कार्नैप और उनके जैसे विचारक जो थे वो 19वीं सदी का जो जर्मन आदर्शवाद था उसकी हवा हवाई बातों से तंग आ चुके थे।
इसी सोच से निकला वो वियना सर्कल।
अच्छा, वियना सर्कल। हाँ, सुना है इसके बारे में।
ये 1920 और 30 के दशक में वियना में दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ ये सब मिलते थे और कोशिश करते थे कि दर्शन को एक नई, ज्यादा वैज्ञानिक दिशा दी जाए।
और यही वियना सर्कल फिर तार्किक प्रत्यक्षवाद का गढ़ बना।
बिल्कुल, और जाहिर है ये विचार कहीं आसमान से नहीं टपके थे। गॉटलोब फ्रेगे, बर्ट्रांड रसेल, लुडविग विटगेंस्टाइन, इन जैसे जो बड़े विचारक थे जिन्होंने तर्कशास्त्र में, लॉजिक में नए नए काम किए थे, उनका इन पे बहुत गहरा असर था।
तो उन्हें लगा कि लॉजिक के ये जो नए टूल्स हैं इनसे दर्शन की पुरानी गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं।
हाँ, या कम से कम ये दिखाया जा सकता है कि वो गुत्थियां असल में है ही नहीं। लेकिन देखिए विडंबना क्या हुई।
क्या? जिस नाजीवाद की बौद्धिक अस्पष्टता के खिलाफ ये लोग खड़े थे उसी नाजीवाद ने यूरोप में इस आंदोलन को लगभग कुचल दिया।
ओ, वो कैसे?
नाजी लोग वियना सर्कल के विचारों को यहूदी, पतित ऐसा कुछ मानते थे और कार्नैप समेत कई लोगों को यूरोप छोड़ना पड़ा।
अच्छा, तो वो भाग गए वहां से।
हाँ, तो यूरोप में तो ये आंदोलन बिखर सा गया लेकिन इसके बीज कह सकते हैं अटलांटिक पार अमेरिका और ब्रिटेन पहुंचे
और वहां इन्होंने जड़ पकड़ ली।
हाँ, वहां इन्होंने विश्लेषणात्मक दर्शन यानी एनालिटिक फिलॉसफी के रूप में एक नई बहुत मजबूत पहचान बनाई।
अब थोड़ा कार्नैप के शुरुआती जीवन पर नजर डालते हैं। उनका जन्म तो जर्मनी में हुआ था, है ना?
रॉन्स्टॉफ में।
हाँ, जर्मनी में, और उन्होंने जेना और फ्राइबर्ग विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की भौतिकी, गणित और दर्शन।
और ये दिलचस्प है कि उनके एक टीचर गॉटलोब फ्रेगे थे।
हाँ, फ्रेगे, जिन्हें मॉडर्न लॉजिक का पितामह माना जाता है। तो फ्रेगे के जो भाषा और तर्क पर विचार थे उनकी छाप कार्नैप पर साफ दिखती है। इट
होस्ट स्पीकर,
उनकी पढ़ाई दिश में रुकी भी थी शायद विश्व युद्ध की वजह से।
हाँ, पहले विश्व युद्ध में उन्होंने 3 साल जर्मन सेना में काम किया और युद्ध के बाद के जो अनुभव थे, और साथ में 2 खास किताबें थी।
कौन सी?
एक तो रसेल और व्हाइटहेड की प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसने दिखाया कि कैसे पूरे गणित को लॉजिक पर खड़ा किया जा सकता है।
ओके।
और दूसरी थी विटगेंस्टाइन की वो थोड़ी रहस्यमय सी किताब ट्रैक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलोसॉफिकस।
हाँ, ट्रैक्टेटस काफी मुश्किल मानी जाती है। वो
है तो, लेकिन इन सब ने मिलकर कार्नैप को ये यकीन दिला दिया कि देखो ये जो मॉडर्न लॉजिक के नए औजार है ना, इनसे हम या तो पुरानी दार्शनिक समस्याओं को सुलझा सकते हैं
या फिर
ये दिखा सकते हैं कि वो असल में समस्याएं हैं ही नहीं, वो बस भाषा के गलत इस्तेमाल से पैदा हुई पहेलियां हैं।
और फिर 1926 में वो वियना चले गए, वियना सर्कल में शामिल हुए। ये एक बड़ा मोड़ था उनके जीवन में।
बिल्कुल, लेकिन फिर वही नाजी खतरा बढ़ा और 1935 में उन्हें अमेरिका जाना पड़ा।
अमेरिका में इन्होंने कहाँ पढ़ाया?
पहले शिकागो विश्वविद्यालय में काफी लंबे समय तक, 1936 से 1952 तक, और फिर बाद में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स यानी UCLM,
और वहां उन्होंने अमेरिकी दर्शन पर काफी प्रभाव डाला।
हाँ, कई पीढ़ियों को पढ़ाया, प्रभावित किया, और एक तरह से ये जो विश्लेषणात्मक दर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो यूरोप से अमेरिका शिफ्ट करने में उनकी बड़ी भूमिका रही।
तो चलिए अब आते हैं उनके उन बड़े आइडियाज पर जिन्होंने दर्शन की दुनिया में कह सकते हैं हलचल मचा दी थी। उनका मुख्य लक्ष्य तो था दर्शन को वैज्ञानिक बनाना।
हाँ।
और इसी कोशिश में उनका वो सबसे ज्यादा चर्चित और शायद विवादित भी विचार आया।
हाँ, वो था तत्वमीमांसा का उन्मूलन, एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स।
जीरो एक्सपर्ट स्पीकर तत्वमीमांसा का उन्मूलन, मतलब
कार्नैप ने बहुत सख्ती से ये कहा कि मेटाफिजिक्स के जो बड़े बड़े दावे होते हैं जैसे सत्य ही शिव है, या वो हाइडेगर का वाक्य था ना, शून्य शून्य करता है,
नथिंगनेस नथिंग्स।
हाँ हाँ,
कार्नैप ने कहा ये वाक्य झूठे नहीं है।
अच्छा, तो फिर
ये अर्थहीन है, मीनिंगलेस।
अर्थहीन क्यों?
क्योंकि आप इन्हें किसी अनुभव या प्रयोग से जांच ही नहीं सकते कि सही है या गलत। ये बस छद्म कथन है, स्यूडो स्टेटमेंट्स।
बाप रे, मतलब अगर किसी बात को हम अपनी इंद्रियों से, अपने अनुभव से या किसी एक्सपेरिमेंट से परख नहीं सकते तो वो दार्शनिक तौर पर बेमानी है
उनके हिसाब से। हाँ,
ये तो बहुत ही कड़ी बात कह दी उन्होंने। इसका मतलब तो फिर नैतिकता, सौंदर्य, ईश्वर, इन सब पर जो बातें होती हैं वो सब निरर्थक हो गई।
देखिए, उनके शुरुआती नजरिए से तो हाँ, उनका तर्क था कि ये कथन दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं देते, ये बस हमारी भावनाएं जाहिर करते हैं या जीवन के प्रति हमारा एक नजरिया, जैसे कोई कविता या संगीत करता है।
भी है जब आप बता सकें कि उसे सही या गलत साबित करने का तरीका क्या है।
ये वेरिफिकेशन प्रिंसिपल ही तार्किक प्रत्यक्षवाद की पहचान बन गया।
हाँ बिल्कुल, और इसी कठोरता के साथ साथ उनका दूसरा बड़ा योगदान जुड़ा था, भाषा का तार्किक विश्लेषण।
वो मानते थे कि दार्शनिक का काम दुनिया के रहस्य खोजना नहीं है।
नहीं, बल्कि हमारी भाषा, खासकर जो विज्ञान की भाषा है, उसकी बनावट को, उसके लॉजिक को साफ करना है।
जैसे चश्मे का नंबर साफ करना।
हाँ, बढ़िया मिसाल है। अगर भाषा का चश्मा धुंधला है तो विचार भी धुंधले दिखेंगे। दर्शन का काम उस चश्मे को साफ करना है ताकि हमें चीजें तार्किक रूप से स्पष्ट दिखें।
और इसी भाषा और तर्क पर काम करते हुए उनका एक और बड़ा क्रांतिकारी आइडिया आया, सहिष्णुता का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। ये उन्होंने अपनी किताब द लॉजिकल सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज में दिया था। ये क्या था?
कि तर्क या भाषा की कोई एक सही या सच्ची व्यवस्था नहीं होती,
कोई एक सही सिस्टम नहीं।
नहीं, हम कोई भी लॉजिकल या लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क, मतलब कोई भी तार्किक या भाषाई ढांचा बनाने और इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं।
अच्छा,
कोई भी।
हाँ।
शर्त बस इतनी है कि वो ढांचा हमारे मकसद के लिए उपयोगी हो, कारगर हो, जैसे विज्ञान करने के लिए या आपस में बात करने के लिए।
मतलब चुनाव सच्चाई का नहीं बल्कि उपयोगिता का है।
बिल्कुल, उन्होंने तो यहाँ तक कहा तर्क में कोई नैतिकता नहीं होती, आप जो चाहे चुने, बस वो काम आना चाहिए। ये ऐसा था जैसे उन्होंने लॉजिक को किसी परम सत्य की बेड़ियों से आजाद कर दिया, उसे एक टूल बना दिया।
ये तो गजब की बात है। मतलब दार्शनिक सदियों से जो एक सही लॉजिक खोज रहे थे, कार्नैप ने कहा कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, अपनी जरूरत देखो और अपना लॉजिक चुन लो। हाँ, एक तरह से यही। और इसी से जुड़ा उनका एक और जरूरी फर्क था, आंतरिक बनाम बाहरी प्रश्नों का, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल क्वेश्चंस।
ये क्या था?
आंतरिक प्रश्न वो हैं जो हम किसी मान लिए गए भाषाई ढांचे के अंदर पूछते हैं।
जैसे?
जैसे मान लीजिए हमने संख्याओं का ढांचा मान लिया, तो हम पूछ सकते हैं क्या 5 और 7 का जोड़ 12 होता है? इसका जवाब उस ढांचे के नियमों से मिल जाएगा, हाँ या ना।
ठीक है।
लेकिन बाहरी प्रश्न उस ढांचे के बारे में होते हैं, जैसे क्या संख्याएं सच में मौजूद हैं, या क्या ये भौतिक वस्तुएं सच में हैं?
ये तो बड़े दार्शनिक सवाल है।
हाँ, लेकिन कार्नैप ने कहा कि ये बाहरी सवाल असल में कॉग्निटिव सवाल हैं ही नहीं, ये सूडो क्वेश्चन है, छद्म प्रश्न।
छद्म प्रश्न?
हाँ।
मतलब एक्सपर्ट स्पीकर,
मतलब इनका कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं हो सकता। किसी ढांचे के बारे में हम सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल सवाल पूछ सकते हैं, क्या ये ढांचा हमारे मकसद के लिए उपयोगी है।
अच्छा, तो ये पूछना ही गलत है कि क्या गणित सच है, बस ये पूछें कि क्या गणित विज्ञान के लिए उपयोगी है।
उनके नजरिए से हाँ, ये तो पूरी बहस को ही बदल देता है।
बिल्कुल, ये यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद वाली बहस को ही किनारे लगा देता है एक तरह से।
सही कहा। अब उनकी कुछ मुख्य किताबों की बात कर लेते हैं जिन्होंने इन विचारों को फैलाया।
हाँ, उनकी वो शुरुआती किताब थी द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, काफी महत्वाकांक्षी लग रही थी।
बहुत ज्यादा। उसमें उन्होंने कोशिश की थी ये दिखाने की कि दुनिया का सारा ज्ञान, साइंस के सिद्धांत भी कैसे सिर्फ हमारे अपने निजी बुनियादी सेंसरी एक्सपीरियंस से, मतलब संवेदी अनुभवों से, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप बन सकता है।
ये तो अनुभववाद को बिल्कुल चरम पर ले जाना हुआ।
हाँ, फिर आई द लॉजिकल सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज 1934 में, ये शायद उनकी सबसे प्रभावशाली किताब रही।
सहिष्णुता का सिद्धांत था।
हाँ।
और जहाँ उन्होंने कहा कि दर्शन का काम भाषा के लॉजिकल सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास का अध्ययन करना है, फिर बाद में मीनिंग एंड नेसेसिटी आई 1947 में,
उसमें क्या था?
उसमें उन्होंने मीनिंग की थ्योरी को और डेवलप किया, किसी शब्द के इंटेंशन यानी उसके अर्थ या कॉन्सेप्ट और एक्सटेंशन यानी वो चीजें जिन पर वो लागू होता है, इसके बीच का फर्क समझाया।
अच्छा, इंटेंशन और एक्सटेंशन, ये तो आज भी लॉजिक और लिंग्विस्टिक्स में इस्तेमाल होता है।
हाँ, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। और उन्होंने प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता और कन्फर्मेशन यानी पुष्टि के तर्क पर भी बहुत काम किया।
हाँ, वो किताब थी लॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी।
बिल्कुल।
वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वैज्ञानिक सबूत किसी थ्योरी को किस हद तक सपोर्ट करते हैं, इसका लॉजिक क्या है। अब अगर कार्नेप की तुलना उनके समकालीन विचारकों से करें तो तस्वीर और साफ होती है, जैसे विटगेंस्टाइन।
हाँ, एक्सपर्ट स्पीकर। हाँ, विटगेंस्टाइन का उन पर असर तो था, और वो भी मानते थे कि दर्शन भाषा की उलझनों से लड़ना है, लेकिन एक फर्क था।
क्या फर्क था?
कार्नेप ज्यादा आशावादी थे कि हम विज्ञान के लिए एक आदर्श पूरी तरह लॉजिकल भाषा बना सकते हैं।
और विटगेंस्टाइन?
विटगेंस्टाइन को बाद में लगा कि हमारी रोजमर्रा की भाषा की जो जटिलता है, जो रंग है, वो किसी ऐसी आदर्श फॉर्मल भाषा में समा नहीं सकते।
अच्छा।
और कार्ल पॉपर, वो भी तो उसी दौर के थे।
हाँ, पॉपर वो वियना सर्कल के आलोचक भी थे। उन्होंने कहा कि विज्ञान की पहचान वेरिफिकेशन नहीं बल्कि फॉल्सिफाइबिलिटी है, मिथ्याकरणीयता।
मतलब कोई थ्योरी वैज्ञानिक तभी है जब हम बता सकें कि उसे गलत कैसे साबित किया जा सकता है।
बिल्कुल। जबकि कार्नेप कन्फर्मेशन पर जोर देते रहे कि कैसे सबूत थ्योरी को कन्फर्म करते हैं, उसकी लॉजिकल प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं।
और फिर उनके वो मशहूर छात्र जो बाद में आलोचक बन गए, क्विन।
हाँ, एक्सपर्ट स्पीकर। हाँ, विलर्ड वैन ऑर्मन क्विन, WVO क्विन। उन्होंने तो कार्नेप के दर्शन की एक बुनियादी चीज पर ही सवाल उठा दिया।
किस चीज पर?
कार्नेप मानते थे कि सत्यों में एक गहरा फर्क है, एनालिटिक सत्य और सिंथेटिक सत्य।
हाँ, एनालिटिक जो परिभाषा से सच हो, जैसे सभी कुंवारे अविवाहित है, और सिंथेटिक जो दुनिया के फैक्ट्स पर निर्भर करें, जैसे दिल्ली राजधानी है।
सही। क्विन ने अपने फेमस लेख अनुभववाद के दो हठधर्मिता में तर्क दिया कि ये जो एनालिटिक सिंथेटिक का भेद है ना, ये उतना साफ और पक्का है ही नहीं जितना कार्नेप मानते थे।
और इस आलोचना का क्या असर हुआ?
इसने तार्किक प्रत्यक्षवाद की नींव को काफी हिला दिया। कई लोग मानते हैं कि यहीं से क्लासिकल लॉजिकल पॉजिटिविज्म का अंत शुरू हुआ।
तो क्या इसका मतलब ये माने कि कार्नेप का पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो गया? आज उनके विचारों का कोई मतलब नहीं बचा?
नहीं नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। ये सच है कि वो शुरुआती बहुत सख्त वाला लॉजिकल पॉजिटिविज्म आज ज्यादातर दार्शनिक नहीं मानते।
लेकिन कार्नेप की जो विरासत है, जो लेगेसी है, वो बहुत बड़ी और गहरी है। वो बेशक 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में गिने जाते हैं।
किस तरह से?
उन्होंने विज्ञान के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ साइंस, को एक अलग व्यवस्थित और कठोर विषय के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
और उन्होंने दर्शन में स्पष्टता, लॉजिकल सटीकता और तर्कसंगत बहस का जो एक स्टैंडर्ड सेट किया।
बिल्कुल। वो आज भी एनालिटिक फिलॉसफी की पहचान है। भले ही लोग उनके जवाबों से सहमत ना हो, पर उन्होंने सवाल पूछने का जो तरीका सिखाया, जिस तरह की क्लैरिटी की मांग की, वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
और उनका असर सिर्फ दर्शन तक ही नहीं रहा।
नहीं, उनके जो लॉजिकल मेथड्स थे, भाषा का विश्लेषण करने का तरीका था, उसने कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती दौर और भाषा विज्ञान को भी प्रभावित किया।
अच्छा।
AI को भी। हाँ, कहते हैं वो शुरुआती कंप्यूटरों को देखकर बड़े उत्साहित होते थे कि कैसे उनके फॉर्मल लॉजिक सिस्टम्स को मशीनों में लागू किया जा सकता है।
तो आज भी जब हम वैज्ञानिक सिद्धांतों पर या भाषा और सच्चाई के रिश्ते पर बात करते हैं,
हाँ, या ज्ञान की सीमाओं पर, तो कार्नेप के विचार कहीं ना कहीं घूम फिर कर आ ही जाते हैं।
उनकी कुछ बातें भी तो हैं जो उनके विचारों को दर्शाती हैं, जैसे वो सहिष्णुता के सिद्धांत पर कहते थे।
हाँ, कि तर्कशास्त्र में कोई नैतिकता नहीं होती, हर कोई अपनी इच्छानुसार अपना तर्कशास्त्र यानी अपनी भाषा का रूप बनाने के लिए स्वतंत्र है।
बड़ी बोल्ड बात है, ये
है तो। और उनकी व्यावहारिकता इस बात में दिखती है, किसी भी अमूर्त भाषाई रूप की स्वीकृति या अस्वीकृति अंततः उपकरणों के रूप में उनकी दक्षता द्वारा तय की जाएगी।
मतलब काम आना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए।
हाँ,
बस लेकिन जाहिर है आलोचनाएं बीवी क्वीन की बात तो हमने की
और वो सत्यापन सिद्धांत वाली आलोचना
हाँ वो बहुत बड़ी आलोचना थी आलोचकों ने पूछा कि भाई आपका ये जो वेरिफिकेशन प्रिंसिपल है ये खुद कैसे वेरीफाई होगा ये वाक्य कि सिर्फ वही बातें सार्थक हैं जो अनुभव से जांची जा सकें क्या ये वाक्य खुद अनुभव से जांचा जा सकता है
ये तो नहीं लगता
तो क्या ये सिद्धांत खुद अपनी ही कसौटी पर फेल होकर निरर्थक नहीं हो जाता ये एक बड़ी मुश्किल थी पॉजिटिविस्ट्स के लिए
और जैसा हमने पहले भी कहा कई लोगों को लगा कि कार्नैप का दर्शन बहुत ज्यादा सीमित कर देता है चीजों को
हाँ कि वो नैतिकता कला धर्म जीवन के अर्थ जैसे जरूरी सवालों को सिर्फ इसलिए साइड कर देता है क्योंकि वो विज्ञान की भाषा में फिट नहीं होते
ये तो जैसे इंसान होने के एक बड़े हिस्से को नजरअंदाज करना हुआ
बिल्कुल और फिर थॉमस कून जैसे विज्ञान के इतिहासकारों ने भी उनके इस विचार को चुनौती दी कि विज्ञान बस लॉजिक के सहारे आगे बढ़ता है
कून ने तो कहा था कि इसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चीजें भी होती हैं
हाँ कि विज्ञान में पैराडाइम शिफ्ट होते हैं क्रांतियां होती हैं जो सिर्फ शुद्ध लॉजिक से नहीं समझाई जा सकती तो कार्नैप पर यह भी आरोप लगा कि वो चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बना रहे हैं
चलिए अब थोड़ी दिलचस्प बातें करते हैं कार्नैप के बारे में सुना है वो समाजवादी और शांतिवादी थे
हाँ बिल्कुल और इसी वजह से नाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे और एक और मजेदार बात
क्या
वो एस्पेरांतो भाषा के बड़े समर्थक थे
एस्पेरांतो वो जो एक बनाई हुई अंतर्राष्ट्रीय भाषा है
हाँ वही उन्होंने जवानी में ही सीख ली थी और वो मानते थे कि ये देशों के बीच साफ लॉजिकल और शांतिपूर्ण बातचीत का एक बढ़िया जरिया बन सकती है
ये तो उनकी सोच से बिल्कुल मेल खाता है लॉजिकल व्यवस्थित
बिल्कुल उनकी फिलॉसफी का ही एक रिफ्लेक्शन था ये
और ये भी सुना है कि वो हाथ के काम में भी अच्छे थे इतने अमूर्त विचारक
03 एक्सपर्ट स्पीकर हाँ ये भी सच है कहते हैं बढ़े गिरी जानते थे और अपना घर बनाने में भी हाथ बटाया था
09 हो स्पीकर
अरे वाह
01 एक्सपर्ट स्पीकर
तो वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे और एक और बात जो उनके कैरेक्टर के बारे में बताती है क्विन के साथ उनका रिश्ता
हाँ जिन्होंने उनकी सबसे कड़ी आलोचना की
उन्ही के साथ इतने गहरे दार्शनिक मतभेदों के बावजूद दोनों में जीवन भर एक गर्मजोशी एक सम्मान बना रहा उनका जो पत्राचार है वो बौद्धिक बहस कैसे की जानी चाहिए इसका एक आदर्श है
ये सचमुच सीखने लायक बात है विचारों का मतभेद व्यक्तिगत सम्मान को कम ना करें
तो रुडोल्फ कार्नैप कुल मिलाकर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं ज्ञान क्या है असल में हम क्या जान सकते हैं क्या नहीं
और ये जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारी सोच को कैसे बनाती है या कैसे सीमित करती है
हाँ क्या हम वाकई दर्शन को विज्ञान जैसा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं ये बड़े सवाल हैं जो वो छोड़ गए
और आज के जमाने में जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है पोस्ट ट्रुथ की बातें होती हैं
हाँ बिल्कुल
तब कार्नैप की वो जो जिद थी स्पष्टता की लॉजिकल होने की सबूत पर आधारित बात करने की वो शायद पहले से ज्यादा जरूरी लगती है
सही कहा और उनका वो सहिष्णुता का सिद्धांत भी कि अलग अलग नजरिए अलग अलग भाषाई ढांचे हो सकते हैं हमें बस उनकी उपयोगिता देखनी चाहिए
क्या ये हमें आज के इतने बटे हुए समाज में एक दूसरे से बात करने का कोई रास्ता दिखा सकता है
ये सोचने वाली बात है ये सवाल हैं जिन पर हम सबको शायद थोड़ा और सोचना चाहिए
बिल्कुल इस बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातचीत के लिए धन्यवाद
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।